अध्याय 12 धर्म एवं समाज अवधारणा महत्व तथा तीन ऋण का सिद्धांत। धर्म की अवधारणा भूमिका। हिंदू धर्म ग्रंथ में धर्म शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि धर्म शब्द का संबंध कर्तव्य स्वभाव, करने योग्य कार्यों, वस्तु के आंतरिक गुण और पवित्रता आदि से लगाया जाता है। धर्म शब्द धिय धातु से बना है, अभिप्राय धारण करने से है। दूसरे शब्दों में धर्म वह है जिसके द्वारा ब्रह्मांड धारण किया जाता है। धारण करने से लोग इसे धर्म कहते हैं। धर्म प्रजा को धारण करता है, जो धारण के साथ रहे वह धर्म है, यह निश्चय है। धर्म की अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषा। वेदों, उपनिषदों, गीता और स्मृतियों में धर्म को भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है, परंतु इन सभी ने यह माना है कि धर्म का उद्देश्य जीवन के सत्य को उद्भाषित करना है। सभी यह मानते हैं कि धर्म जीवन को समानता, संपन्नता प्रदान करने की विधि है। ऋग्वेद में धर्म को उन्नायक और संतोषक, अर्थात ऊंचा उठाने वाला और पालन पोषण करने वाला बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में धर्म को धार्मिक कर्तव्यों के सर्वांग स्वरूप में स्पष्ट किया गया है। छंदोग्य उपनिषद में धर्म का तात्पर्य विभिन्न वर्णों के कर्तव्यों से बताया गया है। तैतरीय उपनिषद में धर्म का अर्थ जीवन के विभिन्न आश्रमों से संबंध कर्तव्यों के पालन करने हेतु संकेत करता है। डॉक्टर राधा किशन के अनुसार, जिन सिद्धांतों के अनुसार हम अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं, जिसके द्वारा हमारे सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है, वही धर्म है। यह जीवन का सत्य है, हमारी प्रकृति को निर्धारित करने वाला शक्ति है। श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, जिससे मानव जीवन के व्यवहारिक और आध्यात्मिक पक्ष का विकास हो, जिसमें सभी प्रकार का सबका और अपना हित हो, जिससे सभी को कुछ संतोष मिले, जो जीवन में व्यवस्था, नियम, बद्धता, चेता और पवित्रता के द्वारा पूर्णता उत्पन्न करे, जो वेदों को निर्देश हो, वही धर्म है। धर्म की जो परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं, उससे दो उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, नंबर एक अभ्युदय और नंबर दो निःश्रेयस। अभ्युदय का अर्थ है कि धर्म वह तथ्य है जो लौकिक सुख, समृद्धि और संपन्नता में वृद्धि करता है। निःश्रेयस का अर्थ है कि पारलौकिक सफलता या मोक्ष की प्राप्ति। इस प्रकार धर्म शब्द का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। विवेकानंद ने लिखा है, आत्मा को ब्रह्मा के रूप में समझ लेना और उसका साक्षात्कार करना, वही धर्म है। धर्म केवल सुन लेने या मान लेने की चीज नहीं है, बल्कि जब समस्त मन प्राण विश्वास के साथ एक हो जाए, तब उसी को हम धर्म कहते हैं। निस्वार्थ और कर्तव्य प्राणता ही धर्म की कसौटी है। प्रोफेसर काणे ने लिखा है, धर्म शब्द से शास्त्रकारों का अभिप्राय किसी ईश्वरीय मत अथवा संप्रदाय से नहीं है, बल्कि जीवन के ऐसे तरीके अथवा आचरण के ऐसी संहिता से है जो एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज का सदस्य होने के रूप में व्यक्ति की क्रियाओं को नियमित करती है, तथा जिसको भारतीय व्यक्तित्व का क्रमशः विकास करना तथा उसे इस योग्य बनाना है कि मानव अमर तत्व को प्राप्त कर सके। धर्म का स्वरूप। हिंदू धर्म किसी मत तथा संप्रदाय का द्योतक नहीं है, वह जीवन की एक ऐसी आचार संहिता है जिसे समाज के किसी अंग अथवा व्यक्ति के रूप में अपने कर्म तथा कृत्यों द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है। वह व्यक्ति को क्रमशः अपने लक्ष्य को प्राप्त करने योग्य बनाता है। इसी दृष्टिकोण में धर्म को दो भागों में बांटा गया है, नंबर एक स्रोत, नंबर दो स्मार्ट। स्रोत धर्म में उन कृतियों तथा संस्कारों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध वैदिक संहिताओं से है, यथा अग्नियों की प्रतिष्ठा, यज्ञ तथा सोम कृत्य। स्मार्ट धर्म, स्मार्ट धर्म में उन बातों का समावेश है जिनका संबंध स्मृतियों से है। स्मार्ट धर्म मुख्य रूप से वर्णों के कर्तव्यों तथा विशेषाधिकार का वर्णन करता है। कुल धर्म शास्त्रों में रूपों का वर्णन इस प्रकार किया गया है, विधर्म, परधर्म, उपधर्म, धर्म मास तथा चल धर्म। विधर्म का तात्पर्य उस धर्म से है जो किसी व्यक्ति के निजी धर्म से मेल ना खाता हो। विधर्म का तात्पर्य उस धर्म से है जिसके अनुयायी उस व्यक्ति से भिन्न हो। इसी प्रकार चल धर्म धर्म की अभिव्यक्ति प्रतीत होती है, लेकिन वह वस्तुतः धर्म सत्य को प्रकट नहीं करता, अतः अपने को को पहचानने के लिए बुद्धि आवश्यक है। हिंदू दार्शनिकों के मतानुसार जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है उसे उसका सतफल प्राप्त होता है। धर्म के अनुकरण के लिए यदि आवश्यक हो तो व्यक्ति को अर्थ तथा काम का त्याग करना ही चाहिए। धर्म के प्रकार। हिंदू धर्म के वास्तविक स्वरूपों को तीन प्रमुख भागों और उनसे संबंध अनेक उपविभागों में निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर एक, सामान्य धर्म। सामान्य धर्म का अभिप्राय आचार व व्यवहार के उन सामान्य नियमों से है जिनका प्रत्येक वर्ण तथा प्रत्येक आश्रम के व्यक्ति के लिए आवश्यक है। उसमें आचार शास्त्र के सामान्य सिद्धांतों का समावेश होता है तथा सत्य की सर्वोपारिता। ऋग्वेद के अनुसार सत्य तथा असत्य में प्रतियोगिता चलती है। दोनों में जो सत्य है सोम उसी की रक्षा करता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो सत्य है मनुष्य उसी को बोले। इसी प्रकार समावर्तन संस्कार के समय गुरु शिष्य को सर्वप्रथम यह शिक्षा देता है सत्यम वद धर्मम चर। इसी प्रकार तप के गुण माने गए हैं दान आचार्य अहिंसा तथा सत्य वचन। बृहदारण्यक उपनिषद में अनुसार मनुष्य को दान दया तथा दम आत्मनिग्रह इन तीन गुणों को ग्रहण करना चाहिए। गौतम सूत्र के अनुसार वही मनुष्य ब्रह्मा लोक के योग्य है जिसमें आठ गुण हो तथा दया शांति अनुसुया शौच अनालस्य मंगल अकर्मण्य तथा अस्पिहा। वशिष्ठ के अनुसार सभी आश्रम के व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे चुगलखोरी ईर्ष्या घमंड अहंकार अविश्वास प्रवंचना लोभ अप्रबोध क्रोध प्रतिस्पर्धा आत्म प्रशंसा आदि का त्याग करे। मनुस्मृति में सामान्य धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। द्वितीय क्षमा दमो अस्तेयम शौच मिंद्री निग्रह धर्म विद्या सत्यम क्रोधे दशकम धर्म लक्षणम। इन लक्षणों को स्पष्ट करने से सामान्य धर्म स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। धृति, अपनी जीभ या जनन इंद्रियों पर संयम रखना धृति कहलाता है। जो व्यक्ति धृति या धैर्य का गुण विकसित कर लेता है वह धीर है। क्षमा, क्षमा का तात्पर्य सबल होते हुए भी उदार करना है। जो व्यक्ति निर्बलता या कायरता के कारण अन्याय सहन कर लेता है वह क्षमावान नहीं है बल्कि क्षमावान वही है जो सच्ची रहते हुए भी उदार रहे। दम, काम और लोभ पर संयम। काम और लोभ पर संयम कर लेना धर्म के अंतर्गत आता है। शारीरिक नियमों को लेकर जीवन को शुद्ध और नियमित बनाना धर्म है। अस्तेय, सामान्य रूप से अस्तेय का अर्थ चोरी ना करना, परंतु सामान्य धर्म के लक्षणों के रूप में परिभाषित करते हुए कहा गया है कि सोए हुए पागल या अविवेकी व्यक्ति से विविध उपाय द्वारा छल करके कोई चीज ले लेना चोरी है। शुचिता या पवित्रता, पवित्रता का तात्पर्य केवल साफ वस्तुओं को धारण कर लेना आदि ही नहीं, शारीरिक पवित्रता के साथ मन की पवित्रता भी आवश्यक है। पवित्रता का वास्तविक अर्थ मन जीवात्मा और बुद्धि का पवित्र रखना है। यह पवित्रता ही व्यक्ति में दैवी भावना का विकास करती है। इंद्रिय निग्रह, मनुस्मृति में इंद्रिय निग्रह को धर्म का एक लक्षण माना गया है। इंद्रियों का दमन हो जाने पर मनुष्य के समस्त लक्ष्य अर्थहीन हो जाते हैं। धी अथवा बुद्धि, धर्म का सातवां प्रमुख लक्षण बुद्धि का समुचित विकास है, क्योंकि बुद्धि के समुचित विकास के बिना कर्तव्यों को पूरा नहीं किया जा सकता। विद्या, विद्या को भी धर्म का लक्षण माना गया है। जिस प्रकार विद्या के द्वारा मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष जैसे पुरुषार्थों के वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है वही वास्तविक विद्या है। सत्य, सत्य का अर्थ केवल सत्य तो बोलना ही नहीं बल्कि सत्य मनसा वाचा कर्मणा होना चाहिए। महाभारत में तो सत्य के अंदर ही सामान्य के समस्त लक्षणों का समावेश कर दिया गया है। आक्रोध, क्रोध सभी अवगुणों का आधार है और क्रोध की स्थिति में मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता है। अतएव अक्रोध को भी धर्म का लक्षण माना गया है। उपयुक्त समस्त लक्षणों से स्पष्ट है कि लक्षण किसी धर्म से नहीं वरन मानव धर्म से संबंध है। ये सभी लक्षण कर्तव्य की पूर्ति में सहायक हैं और उनके समुचित विकास से व्यक्ति का शारीरिक मानसिक आत्मिक और आध्यात्मिक विकास हो सकता है। नंबर दो, विशिष्ट धर्म। विशिष्ट धर्म का अभिप्राय उस धर्म से है जिसका पालन किसी वर्ण विशेष अथवा आश्रम विशेष के सदस्यों के द्वारा आवश्यक ठहराया गया है। इसी के आधार पर शास्त्रकारों ने स्वधर्म तथा परधर्म में भी भेद किया है। यह धर्म वेद तथा आश्रम के विभिन्न कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों का वर्णन करता है। मनुस्मृति के अनुसार वेदा अध्ययन, ध्यान लेना, यज्ञ करना ब्राह्मण का धर्म है। प्रजा की तथा अर्थ की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, विषय में आसक्ति न रखना क्षत्रियों का धर्म है। पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना और खेती करना वैश्यों का धर्म है। अनिंदक रहते हुए तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का धर्म है। कौटिल्य के अनुसार तीनों वेद चार धार्मिक व्यवस्थाओं का निर्धारण करते हैं। अध्ययन करना, पढ़ना, यज्ञ करना, दान लेना और दान देना ब्राह्मण का धर्म है। अध्ययन करना, दान लेना और यज्ञ करना तथा रोग से रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। इसी प्रकार यज्ञ, दान, कृषि और वाणिज्य, वैश्य का और दूसरे की सेवा करना शूद्र का धर्म है। मनु ने आश्रम धर्म का भी उल्लेख किया है। मनु के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म वेदा अध्ययन है। कौटिल्य के अनुसार ब्रह्मचारी का धर्म वेदा का अध्ययन करना, अग्नि की पूजा करना, त्याग, शिक्षा से जीवन यापन और गुरु सेवा करना है। यदि गुरु अनुपस्थित हो तो अपने ज्येष्ठ सहपाठी की सेवा करनी चाहिए। गृहस्थ का धर्म गृहस्थी के दायित्वों का निर्वाह है। वानप्रस्थ में विषयों के प्रलोभन से मुक्त होना धर्म है। कौटिल्य ने वानप्रस्थ आश्रम के उत्तर दायित्वों को इस प्रकार बतलाया है। पवित्रता, खुले स्थान पर सोना, अग्नि की पूजा करना, देवता, पूर्वज तथा आगंतुक का सम्मान करना और कंद मूल फलों द्वारा जीवित रहना। इसी प्रकार संन्यास में प्रमुख धर्म मोक्ष साधन करना है। कौटिल्य के अनुसार इंद्रियों पर नियंत्रण आसक्ति रहे कि यहाँ धर्म कर्तव्य के रूप में लिया गया है। हिंदू शास्त्रकारों ने स्त्रियों और पुरुषों के भिन्न भिन्न धर्मों का उल्लेख किया है। गुरु और शिष्य का धर्म एक दूसरे से भिन्न है। सैनिक का धर्म राजा के धर्म से भिन्न है। इसी प्रकार समाज में दूसरे व्यक्तियों की तुलना एक व्यक्ति की जो स्थिति होती है उसके सामने जिस प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं उसके अनुसार निर्धारित होने वाले कर्तव्य को ही विशिष्ट धर्म कहा जाता है। विशिष्ट धर्म को स्वधर्म कहा गया है क्योंकि वह एक विशेष व्यक्ति का अपना धर्म होता है, सामान्य व्यक्तियों का सामान्य धर्म नहीं है। इस विशिष्ट धर्म को उसके कुछ प्रमुख स्वरूपों के आधार पर सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। नंबर एक, वर्ण धर्म। इस धर्म का तात्पर्य उन कर्तव्यों से है जो कि चारों व्यक्तियों के लिए है, यथा ब्राह्मण के लिए अध्ययन, शिक्षा, दान, जप इत्यादि, क्षत्रिय के लिए दूसरों की रक्षा करना, अध्ययन, दान आदि, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य, वैश्य के लिए और अन्य वर्णों की सेवा करना शूद्र के लिए। नंबर दो, आश्रम व्यवस्था। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने लिए, दूसरे व्यक्तियों के लिए और संपूर्ण समाज के प्रति कर्तव्यों का पूरा करने के दृष्टिकोण से जीवन को चार आश्रमों में विभाजित किया गया है। नंबर एक, ब्रह्मचर्य आश्रम। नंबर दो, गृहस्थ। नंबर तीन, वानप्रस्थ। नंबर चार, संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों के लिए अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। आश्रम के अंतर्गत आते हैं नंबर तीन, कुल धर्म। कुल धर्म का तात्पर्य परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना और परिवारों की परंपराओं में निष्ठा रखना है। कुल धर्म के अंतर्गत मुख्यतः एक पति धर्म, नंबर दो पत्नी धर्म, नंबर तीन पुत्र धर्म, नंबर चार पति धर्म सम्मिलित किया जाता है। इन सब के लिए अलग अलग प्रकार के आचरण की व्यवस्था की गई है और उनका धर्म है। नंबर चार, राजधर्म। राजधर्म के अंतर्गत राजा के कर्तव्यों का समावेश किया गया है। विभिन्न शास्त्रकारों ने राजा के कर्तव्यों का विस्तृत उल्लेख किया है। एक राजा को प्रजा के प्रति किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, यह राजधर्म के अंतर्गत ही आता है। नंबर पाँच, युग धर्म। मनुस्मृति, पराशर स्मृति, पद्म पुराण आदि में युग धर्म की विवेचना की गई है। सतयुग में तप धर्म, त्रेता युग में ज्ञान धर्म, द्वापर युग में यज्ञ धर्म और कल युग में दान धर्म सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर छह, मित्र धर्म। हिंदू धर्म में मित्रता के बंधन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मित्र धर्म की भी विवेचना हिंदू शास्त्रकारों ने किया है। नंबर सात, गुरु धर्म। हिंदू धर्म के अंतर्गत जहाँ गुरु ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिरूप माना गया है, वही उसके धर्म को निर्धारित किया गया है जिसको उसे समुचित रूप से निर्वाह करना चाहिए। विवेचन से यह स्पष्ट है कि विशिष्ट धर्म एक व्यवहारिक धर्म है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्थिति से अनुकूल न करना तथा अपने समूह से आदर्शों को अस्थायी रूप देने का अवसर प्रदान करता है। वास्तव में समाज में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी का आदर्श है, अतएव उसका आचरण केवल उसके जीवन को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि दूसरे व्यक्तियों को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में स्वधर्म के निर्वाह को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। नंबर 3, आपद धर्म। हिंदू धर्म में सभी व्यक्तियों को यदि सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के धर्मों का निर्धारण किया गया है, परंतु हिंदू शास्त्रकारों के अनुसार आपत्ति काल में सामान्य और विशिष्ट धर्म में कुछ परिवर्तन कर लेने में कोई दोष नहीं है और यह कार्य आपद के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए गाय का पीछा करने वाले कसाई से इस प्रकार का झूठ बोल देना कि गाय बच जाए आपद धर्म ही है। भूखा मरने वाले ऋषि अपने जीवन की रक्षा के लिए शूद्र का झूठा भोजन खा ले तो वह आपद धर्म के अंतर्गत ही आएगा। सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म में अंतर। ऊपर हमने सामान्य धर्म का विवेचन किया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही धर्मों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ हम इन दोनों धर्मों के आधारभूत अंतर को संक्षेप में स्पष्ट कर रहे हैं। नंबर 1, सामान्य धर्म का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और इस धर्म का पालन व्यक्ति के लिए आवश्यक है, इसी कारण इसे मानव धर्म भी कहा जाता है। विशिष्ट धर्म अपेक्षाकृत छोटे समूह के लिए ग्रहणीय होता है और इस कारण इसका क्षेत्र संकुचित होता है। नंबर 2, विशिष्ट धर्म का महत्व सामान्य धर्म की अपेक्षा अधिक है। यदि कभी सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म के आदर्शों में संघर्ष हो जाए तो विशिष्ट धर्म के नियमों का पालन करना वांछनीय माना जाता है। नंबर 3, सामान्य धर्म मानवीय धर्म है और इसका संबंध मानवीय गुणों के विकास एवं आत्मा के परिष्कार से है। दूसरी ओर विशिष्ट धर्म उपयोगितावादी है, इसका उद्देश्य समाज को संगठित रखना तथा विभिन्न समूहों में सामंजस्य बनाए रखना है। नंबर 4, सामान्य धर्म के नियम स्थिर होते हैं और उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर विशिष्ट धर्म के नियमों में देश काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। प्राचीन भारत में धर्म एवं समाज का संबंध। हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत धर्म का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है। धर्म का विचार अथवा धर्म की अवधारणा वस्तुतः हिंदू सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार स्तंभ है। यदि इसे हिंदू चिंतन धारा और लोकाचार से अलग कर दिया जाए तो सारी व्यवस्था बालू के महल के समान हवा के हल्के से झोंके से गिर पड़ेगी। भारतीय समाज तथा इसमें रहने वाले व्यक्ति के जीवन को धर्म की अवधारणा के अंतर धर्म के अवधारणा ने अनेका अनेक आयामों से नियंत्रित तथा नियमित किया है। इसी कारण भारतीय समाज का स्वरूप निर्धारण में धर्म का युगों से एक निर्णायक रोल रहा है। नंबर 1, ऋत। वैदिक आर्यों की सामाजिक व्यवस्था का जो स्वरूप हमें ऋग्वेद में ज्ञात होता है वह एक स्थिति का द्योतक है जिससे उस काल में वैदिक आर्य पहुंच चुके थे। यह स्थिति अनेका अनेक स्थान पर भ्रमण कर चुके आर्यों के विकसित समाज का अंकन है। इसमें ऋत की अवधारणा मिलती है क्योंकि विद्वान यह मानते हैं कि ऋत से ही विकसित होकर धर्म की अवधारणा का जन्म हुआ है, अतएव इसके स्वरूप को जानना आवश्यक है। नंबर का ऋग्वेद के अनुसार ऋत एक अत्यंत व्यवस्था का प्रतीक है जो ऋषियों की निशा तथा समुद्र की सृष्टि के पूर्व दृष्टिगत था। इससे स्पष्टतः ऋग्वेदिक ऋषि इसकी प्राचीनता की ओर इंगित करते जान पड़ते हैं। दूसरी ओर कहा गया है कि ऋत से ही मित्र तथा वरुण ने अतुलनीय शक्ति प्राप्त की, इसे ऋग्वेद में दृढ़ अर्थात अपरिवर्तनीय कहा गया है। वरुण का मूल प्राकृतिक स्वरूप प्राचीनता के कारण ऋग्वेद से भी स्पष्ट नहीं है। मित्र तो सूर्य का एक रूप था जिसकी अपरिवर्तनशीलता अपने नियमों पर डटे रहना सर्वविदित है। इससे ऋत की प्राचीनता का ज्ञान होता है। वही रित की अवधारणा में अपरिवर्तनशीलता का भी ज्ञान होता है, इसका दृढ़ होना भी यही बताता है। नंबर खा, रित रूपी दृढ़ तथा अपरिवर्तनीय अनंत व्यवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। रित देवी तथा मनुष्य सृष्टि को आधार प्रदान करता है। रित का प्रयोग सदाचार के अर्थों में मिलता है। मैक्स मूलर का कहना है कि रित का अर्थ अंग्रेजी के राइट शब्द जैसा है, जो स्वयं सीमित अर्थ वाला नहीं। संभवतः रित का मूल आर्य भाषा के भारोपीय परिवार से संबंध रहा। जर्मन में इसका रूप रेस्ट तथा लैटिन में ओर्डो लगता है। इस प्रकार रित को अति प्राचीन काल से संबंध माना जाता है। नंबर दो, अनित्य। ऋण की दृढ़ता में नैतिकता का पुट है। उसकी अनंत व्यवस्था में विद्वान स्टेबल लाव के दर्शन करते हैं। यह कला काबिलाई वातावरण में चल सकने वाली व्यवस्था हो सकती है, जहाँ सब समान हो। इसके नकारात्मक रूप अनित्य का भी हमें वैदिक साहित्य में ज्ञान होता है। इसका अर्थ सत्य को झुठलाना है। अनित्य नैतिकता तथा प्राकृतिक नियमों के बीच तारतम्य की कमी का द्योतक है। अनित्य से हमें एक विकास की व्यवस्था के ज्ञान होते हैं। नैतिक नियमों तथा मान्य प्राकृतिक नियमों के बीच समाज में जब उलट फेर की स्थिति आई, तो समाज में अनित्य की कल्पना का आगमन हुआ। या तो कबीलाई रूप में उलट फेर हो रहा था, या उनका स्वरूप बाहरी कारणों से विकसित होकर किसी नए रूप को जन्म दे रहा था। नंबर तीन, व्रत। इस विघटन में समाज को फिर नैतिकता की ओर बढ़ना था, किंतु यह नैतिकता व्रत सम्मत नैतिकता से कुछ हटकर होती थी। बिना नैतिक नियमों के पालन किए समाज में व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती थी, इसलिए लचीले नैतिक नियमों को आना था। डॉक्टर शिवाजी सिंह ने रित से संबंध व्रत की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। ऋग्वैदिक एक ऋषि ने कहा है, हमें प्राचीन माननीय संप्रभु का विधान, मित्र का व्रत तथा वरुण की दीर्घायु दीर्घ श्रुति का पालन करते हैं। डॉक्टर सिंह ने व्रत में अधिक लचीली व्यवस्था का रूप देखा है। नंबर चार, धर्म। व्रत की लचीली व्यवस्था ने बढ़ते हुए समाज को एक नया मोड़ दिया। आर्यों का समाज विजय करता आगे बढ़ रहा था। विजेता और विजित के बीच एक खाई का होना स्वाभाविक है। सोरोकिन के अनुसार भी विश्व भर के समाज में असमानता मिलती है। प्रत्येक संगठित समाज में अस्त्रीकरण मिलते हैं, जिनके बिना वह चल नहीं सकता। अस्थायी तथा न चलने वाले आधार का रूप पैसे के अस्त्रीकरण में मिलता है। प्रथमतः समूह के जीवन के लिए पैसों का महत्व होता है। दूसरे, इसमें प्रयुक्त होने वाली बुद्धि का स्थान होता है। या तो आय तथा संपत्ति का समान विभाजन होता है और समाज गरीब रहता है, अथवा अधिकाधिक असमानताएं होती है और समाज अधिक संपन्न होता है। आर्यों का वैदिक समाज जब संगठित था, सुव्यवस्थित होने की प्रक्रिया के दौर से गुजर रहा था, तब व्रत जैसी व्यवस्था को भी अधिक व्यवस्थित होना था। विजेता के लिए अधिकार चेतना और विजित के लिए व्यवहार नियमन या कर्तव्य चेतना पर बल देना आवश्यक था। ऐसा रित अनंत या वित्त के अंतर्गत संभव ही नहीं था। यहाँ रित की न्याय और औचित्य की पूर्णता का सवाल ही नहीं था। यहाँ तो समाज व्यवस्था की रक्षा का प्रश्न था। असमान अधिकार वाले अस्त्रीकरण की प्रक्रिया में लगे समाज के व्यवहार नियंत्रण की समस्या थी। रित की तुलना में अधिक व्यवहार्य या प्रैग्मेटिक व्यवस्था की आवश्यकता थी। यह धर्म के अंतर्गत हुआ। धर्म शब्द का उद्भव द्वि धातु से हुआ है। इसका मूल रूप से तात्पर्य धारण करना, आलंबन देना तथा पालन करना अथवा किसी वस्तु का अस्तित्व बनाए रखना होता है। धर्म शब्द का ऋग्वेद में 56 बार प्रयोग मिलता है। अधिकतर धर्म शब्द प्रथमा धर्म अर्थात प्रथम विधियां, संता धर्माणी या प्राचीन विधियां अर्थात धार्मिक विधियों अथवा धार्मिक क्रिया संस्कारों के रूप में मिलता है। कहीं कहीं निश्चित नियम कोष्टक में व्यवस्था या सिद्धांत अथवा आचरण नियम के अर्थों में भी धर्म शब्द का ऋग्वेद में मिलता है। बाज सनेही संहिता में ध्रुवेण धर्मणा प्रयोग एक स्थान पर मिलता है। यहाँ यह ऋतु के अनुरूप लगता है। किंतु अथर्ववेद में धर्म शब्द धार्मिक क्रिया संस्कार करने से अर्जित गुण का बोध हो गया है। नंबर 5, ब्राह्मण तथा उपनिषद। ऐतरेय ब्राह्मण में धर्म शब्द का अर्थ सभी धार्मिक कर्तव्यों के रूप में मिलता है, अर्थात इस ब्राह्मण ग्रंथ में कर्तव्य से धर्म को जोड़ा गया है। इस काल तक कर्तव्यों में ऊंच नीच का भाव समाज में व्याप्त हो चुका था। आर्थिक दृष्टि से हीन विजित लोगों को विजेता आर्य लोग अपने यज्ञिक कर्म कांड की परिधि से बाहर निकाल चुके थे, शूद्र वैश्यिक बन चुके थे। नंबर का शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि धर्म विश्व को उठाए हुए है। राजा को यहाँ धर्म का समर्थक कहा गया है। राजा सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। जब वही धर्म का समर्थक बन गया तो उसने निरंकुशता आ सकती थी। उसके हाथ में समाज की नियमित और नियंत्रित करने की शक्ति धर्म होने से वह अमर्यादित व्यवहार कर सकता था। जान स्पेलमैन के शब्दों में, द प्रैक्टिस में इंडीड हैव बीन सम टाइम डिफरेंट, बट लेट इन नॉट बी सेड दैट द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ एंशिएंट इंडिया इनकरेज्ड एनी टेंडेंसी टुवर्ड ओरिएंटल डिस्पोटिज्म इन दिस रिगार्ड। नंबर ख, छंदोग्य उपनिषद में धर्म शब्द का प्रयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें धर्म के 3 महत्वपूर्ण स्कंधों या शाखाओं का उल्लेख है। यज्ञ, अध्ययन तथा दान या गृहस्थ धर्म में इनमें प्रथम है। तपस्या या तापस धर्म दूसरे स्थान पर है तथा ब्रह्मचर्य या आचार के घर में अंत तक रहना तीसरा है। यहाँ धर्म शब्द से इशारा आश्रम व्यवस्था के कर्तव्यों की ओर लगता है। आश्रम व्यवस्था जो वस्तुतः बाद में उभर कर सामने आई, उससे भी आयाजिक शूद्र को स्थान था ही नहीं। इस प्रकार यहाँ के धर्म शब्द का भी सामाजिक स्थिरीकरण के अंतर्गत कुछ लोगों को दबाने का भाव निहित हो सकता है। गा, देहदा अरण्य उपनिषद में आया है, धर्म क्षेत्र का क्षेत्र है, अतएव धर्म से उच्च कुछ नहीं है। अतएव एक कमजोर व्यक्ति भी धर्म की सहायता से सशक्त प्रशासन कर सकता है, जैसा वह शासक की सहायता से करता है। इस प्रकार धर्म को सत्य कहते हैं, और यदि व्यक्ति घोषित करता है कि सत्य क्या है, वे कहते हैं कि वह धर्म की घोषणा कर रहा है, और यदि वह धर्म की घोषणा करता है तो वे कहते हैं कि वह सत्य बोलता है। वे दोनों ही एक है। उपनिषद क्योंकि दर्शन से अधिक संबंध है, अतएव इनमें धर्म के प्रति सम्मत रूप की छवि मिलती है। यहाँ धर्म एक नैतिक मापक बन जाता है, जिससे सभी कुछ मापा जा सकता है। इसी उपनिषद में ठीक इससे पहले ही ब्रह्माचार वर्णों के निर्माण का वर्णन करके इसके बाद उच्च तत्व का निर्माण हुआ, उसे धर्म बताया गया। नंबर 6, पाणिनी। पाणिनी की अष्टाध्यायी में धर्म के 2 अर्थ मिलते हैं। पहला परंपरागत आचार, क्योंकि ये बंधन पीढ़ी दर पीढ़ी रिवाज के रूप में लोक जीवन में चले आते हैं। दूसरी नीति धर्म के लिए है। पहला अर्थ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज में लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक स्थिरीकरण के अंतर्गत सताया भी जाता है, विशेषतः तब जब वे पराजित लोग होते हैं। ऐसे भी आयचिक सूत्र की जो समाज में दशा है थी, उसे धर्म के अंतर्गत स्वीकार कर लिया जाना पाणिनि से भी स्पष्ट है। नंबर 7, कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आया है, एतत्त्रयो धर्म अश्चतुर्णा वैणा नाम आसमाणाम च स्वधर्म स्थापना दौस कारिक, अर्थात यह त्रय यह 3 वेदों में बताया गया धर्म 4 वर्णों 4 आश्रमों को अपने धर्म में रत रहने के कारण अत्यंत हितकर है। कौटिल्य ने 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों का भी वर्णन किया है। इसमें धर्म शब्द वर्ण आश्रम व्यवस्था के पर्याय के रूप में मिलता है। नंबर 8, स्वधर्म। गीता में भी स्वधर्म निधनम से यह आया है। मनु तथा महाभारत के स्वधर्म के सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार है, स्वधर्म कर्मियों के बावजूद दूसरे की पूर्णता से किया जाने वाला धर्म से बेहतर है। दूसरों का धर्म पालन भयावह है, स्व स्वधर्म पालन में मृत्यु भी श्रेयस्कर है। अपने कर्म का पालन कर पालन धर्म है, चाहे वह कितना ही तिरस्कृत हो। दूसरे के धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। जो भी दूसरे के धर्म का पालन करता है जबकि वह सर्वधर्म का पालन कर सकता है तो वह दंडित किए जाने योग्य है। ईश्वर उतना कभी भी प्रसन्न नहीं होता जितना अपने स्वयं के धर्म को सही तरीके से पूर्ण करने पर। दूसरे के अति सुंदर स्त्री की तरह दूसरे का धर्म भी त्याज है। गीता में तो अधर्म की वृत्ति से वर्ण संकरों के आविर्भाव का सिद्धांत तक प्रतिपादित किया गया है, तो अधर्म का पालन न करना भी अधर्म माना जाता है। नंबर 9, पारलोक या धर्म। दर्शन के पक्ष के विचारकों ने धर्म का संबंध रीति वाली नैतिकता को ध्यान में रखकर पारलोक तक जोड़ डाला। कहा गया है यतोभ्युद्यानी श्रेय सिद्ध सह धर्म, अर्थात वह धर्म है जिसमें इस लोक में अविद्या लौकिक उन्नति स्थूल कल्याण तथा परलोक में परम कल्याण पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति होती है। अर्थात तो धर्म व्याख्या अस्याम यतो अभ्युदयनी श्रेयसः सिद्धि सह धर्म। इसे गीता पर शंकर भाष में हम इस प्रकार पाते हैं, दुविधा ही वेदो अपता धर्म प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षण। इस प्रकार विचारधारा के विकास क्रम में धर्म को दो भागों में बांट डाला गया। निश्रेयस से कर्म बंधन का नाश होकर जन्म मरण से छुटकारा का बोध होता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। इस स्थिति तक पहुँचने के लिए गीताकार ने व्यवस्था दी है। नंबर 10, धर्म एक देवता। निवृत्ति मार्ग निश्रेयस की अवधारणा ने धर्म को और ऊपर उठाया है। उसकी स्थापना लोक मानस में एक देवता के रूप में कर दी गयी। महाभारत में नर नारायण के पिता को धर्म बताया गया है। युधिष्ठिर के कुत्ते को धर्म देवता बताया गया है। यक्ष तथा बगुला महापर्व वन पर्व 31-329 नेवला अश्वमेधिक पर्व 10-19 के रूप में धर्म देवता का रूप बताया गया है। जमदग्नि ऋषि के साथ में धर्म ने क्रोध का रूप धारण किया था। इसी प्रकार जनक ने आत्मज्ञान की परीक्षा लेने के लिए धर्म एक अपराधी ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे। अश्वमेधिक पर्व 92-49 भगवत पुराण प्रथम स्कंद अध्याय 16 में परीक्षित ने धर्म को बैल के रूप में एक बैल से घूमते देखा था, किंतु देवता का यह रूप वस्तुतः जनमानस में व्याप्त धर्म के महत्व के अनुरूप नहीं था। नंबर 11, धर्म तथा पुरुषार्थ। वस्तुतः धर्म एक पुरुषार्थ के रूप में समाज के अधिक निकट था। इससे अर्थ तथा काम और इस रूप में जीवन के सभी पक्ष प्रभावित हो रहे थे। इसे त्रिधर्म धर्म अर्थ तथा काम मनुन 1.8 से 82 में रखा गया है। कुल्लूक भट्ट के अनुसार ये एक दूसरे के विरोधी ना होकर एक दूसरे के पोषक होने के कारण त्रिवर्ग बनते हैं। त्रिवर्ग के रूप में धर्म का संबंध समाज के उच्च वर्ग या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ग के लोगों से था, जिसके लिए उपनयन संस्कार होता था तथा आश्रम व्यवस्था थी। दूसरी ओर शूद्र या समाज के निम्न वर्गों के लिए एक दूसरे रूप की आवश्यकता थी। उच्च वर्ग में ऋषि ऋण से धर्म नामक पुरुषार्थ को जोड़ा गया है, जिसे पूर्ण होने के लिए वेदों में ब्रह्मचर्य आश्रम में विधिवत अध्ययन का विधान किया गया। वही धर्म आयोजित शूद्र के लिए जिसे आश्रम व्यवस्था में नहीं लिया गया, जिसके लिए शिक्षा का विधान नहीं था। देवता ही तो बन सकता था, समाज में हुआ भी यही। प्राचीन भारत में धर्म के रूप तथा प्रकार। धर्म के रूप भगवत पुराण में धर्म के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण शब्द प्रयुक्त मिलते हैं। इसमें स्वधर्म तथा धर्म के अन्य प्रकाशनों के बीच अस्पष्टता लाने की कोशिश की गई है। इनमें विधर्म परधर्म धर्म आभास उपधर्म तथा चल धर्म बताया गया है। स्वधर्म के विरुद्ध जो है वही विधर्म बताया गया है। पर धर्म वह धर्म है जो दूसरे के लिए है, जो अपनी तरह दूसरे के लिए किया है किंतु अपने लिए ना हो। अपधर्म के अंतर्गत निश्चित नैतिक नियमों के विरुद्ध आचरण यथा पाखंड तथा दंभ आते हैं। चल धर्म एक ऐसा प्रकार या रूप है जो नाम पात्रों में तो धर्म है किंतु वास्तविकता में वह धर्म नहीं है। जब मनुष्य अपनी स्वेच्छा की पूर्ति अपने आश्रम सधर्म से हटकर करता है तो यह धर्माभास कहलाता है। व्यक्ति के आदर्शों तथा लक्ष्य को देखते हुए भागवत पुराण में उतना ही बुरा माना गया है जितना अधर्म को। इस मिथ्याचार गीता के 3.6 तथा मिथ्याचार महाशांति पर्व 260.15 भी कहा गया है। महाभारत अनुशासन पर्व में 162.12 में यही बात अधर्मो धर्म रूपेण तीड़े कूप इवादित्यः द्वारा कही गई है। इस प्रकार घास फूस से ढके हुए कुएं को स्थल समझकर हाथी उसमें गिर जाती है, उसी प्रकार अधर्म को कभी कभी धर्म का जामा समाज में पहनाया जाता है। धर्म के प्रकार मिथाक्षरा में धर्म 6 प्रकार का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 वर्ण धर्म, नंबर 2 आश्रम धर्म, नंबर 3 वर्ण आश्रम धर्म, नंबर 4 गुण धर्म, नंबर 5 नैमित्तिक धर्म तथा नंबर 6 साधारण धर्म। वर्ण व्यवस्था के अनुरूप धर्म को वर्ण धर्म कहा गया है। इसी प्रकार व्यवस्था के नियमों तथा मर्यादा के अनुकूल जीवन पद्धति संपद शब्द बनता है और इन दोनों की सम्मिलित मर्यादा जीवन पद्धति वर्ण आश्रम धर्म कहलाती है। गुण से मनुष्य के स्वाभाविक गुणों का बोध होता है। गीता के अनुसार सत्व रज तथा तम की न्यूनता तथा अधिक के अनुसार व्यक्ति किसी एक वर्ण के धर्म का पालन करता है, इससे व्यक्ति की स्वाभाविक वृत्ति तथा गुणों का बोध होता है, जिनके कारण व्यक्ति किसी एक समूह का सदस्य बनता है जिसे वर्ण कहा गया है। इसी कारण नैतिक उपलब्धि तथा परिपक्वता से मनुष्य वानप्रस्थ तथा संन्यास जैसे आश्रम का अधिकारी बनता है। वर्ण आश्रम तथा गुण धर्म नामक चारों धर्मों को साधारण धर्म माना जाता है। इनमें नैतिकता का विशेष महत्व होता है। किसी निमित्त अथवा उद्देश्य से धर्म का रूप बदल जाता है, इसके बदले रूप को नैमित्तिक धर्म कहते हैं। इनके अंतर्गत राजधर्म, दूत धर्म तथा मित्र धर्म को लिया जा सकता है। इसी प्रकार देश जाति तथा संस्कृति की भिन्नता के कारण राक्षस धर्म, वाहलिक धर्म तथा यवन धर्म भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसे विशेष धर्म भी कहा जा सकता है। साधारण धर्म तथा नैमित्तिक या विशेष धर्म से भी जब व्यवस्था ना चल सकी तो धर्म के व्यवस्थाकार ने एक और रूप की कल्पना कर डाली। इसे विशेष कठिनाई के समय प्रयोग में लाना था, इसे आपद धर्म कहा गया। महाभारत के शांति पर्व 128-167 में इसका विशेष रूप से वर्णन मिलता है। आपत्ति काल में अपने वर्ण से नीचे वर्ण के धर्म को इसके अंतर्गत अपनाने की अनुमति है, किंतु यह विशेष परिस्थितियों में मात्र के लिए है। यह इसलिए किया गया था जिससे धर्म के संबंध में मनुष्य तथा समाज की सचेष्टता समाप्त न होने पाए। ऐसा समझा गया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ हीन धर्म ही सही, किंतु परिस्थितियों के ठीक हो जाने पर पुनः यथावत धर्म का आचरण व्यक्ति तथा समाज द्वारा होने लगेगा। इससे परिस्थिति तथा काल के भेद के कारण मूल्य सोपान में आने वाले परिवर्तनों को विनियमित करने की चेष्टा के हम दर्शन करते हैं, जिसके द्वारा उन्होंने समाज में विषम परिस्थितियों में आ जाने वाली तीन कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति को समाप्त करने की कोशिश होगी। धर्म संस्कार। धरा पर जन्म तो सभी लेते हैं। इसमें मनुष्य को जानवरों से अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें प्रज्ञा शक्ति है। यह तर्क संगत है। इसी बात को हिंदू समाज व्यवस्था में धर्म संस्कार के रूप में कहा गया है। जन्म के बाद संस्कार के द्वारा उसका दूसरा जन्म होता है और विवेकशील, न्याय बुद्धि संपन्न, सामाजिक तथा नैतिक पुरुष बनता है। प्राचीन भारत में धर्म परिषद। धर्म की दुर्योग्यता का भी उल्लेख मिलता है। महाभारत के कल्याण पर्व 98 तथा 44 में आया है। दुर्गेह सा परो धर्म अस्तथा धर्मस्य दुर्विदः। अतएव धर्म में संशय होने पर वेद वेदांग के ज्ञाता शिष्ट ब्राह्मणों की सम्मति लेने को मनु ने कहा है। मनु ने 10 शिष्ट ब्राह्मणों की परिषद स्थापित करने को कहा, जिनके अभाव में 3 सदस्यों की त्रयंबरा परिषद का भी विधान मनु ने दिया है, वह जिस तरह के आचरण की व्यवस्था करे वही धर्म है, उसी का पालन करना चाहिए। मात ताओ तथा धर्म पर एक टिप्पणी। डॉक्टर स्पेलमैन ने चीनी दर्शन की ताओ की अवधारणा तथा भारत की धर्म की अवधारणा में साम्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। बृहदारण्यक उपनिषद के शक्तिहीन व्यक्ति द्वारा धर्म की सहायता से सशक्तों पर शासन करने के सिद्धांत का भी साम्य ताओ विचारधारों में खोज निकाला है। इसमें ताओ विचारधारा के अनुसार शास्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मिस्र में भी ऐसी विचारधारा मिलती है। मिस्र में शासक को फराहो कहते थे, उसे देवता माना जाता था, उसी में सारी शक्ति सन्निहित थी, किंतु फराहो की शक्ति को भी मात्र द्वारा सीमित करने के सिद्धांत रूप में अवधारणा थी। धर्म तथा ताओ के समान ही मात्र से भी सही नियमों और व्यवस्थाओं का बोध होता है, जो एक विश्व नियम है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में विकसित हो रहे धर्म के सिद्धांत के समान ही सिद्धांत विश्व के अन्य हिस्सों में भी प्राचीन काल से चल रहे रित धर्म तथा समाज। नंबर एक, कोई भी विचार या व्यवस्था समयानुसार देश तथा काल व्यक्ति के अनुरूप बदल जाती है। रित भी धर्म के रूप में या धर्म का चोंगा पहनकर वर्णाधर्म या आश्रम या वर्ण आश्रम धर्म के रूप में सामने आता है। इनमें जो दृढ़ रहने ना बदलने की बात है इसी की ओर संकेत करती है। आश्रम व्यवस्था में जो कल्पना जोड़ी गई है यह वास्तविकता में नैतिक उत्तरदायित्व कल्पना है। यह विकास की द्योतक है। संभव है कुछ ऐसा कुछ रीत में भी यहाँ हो जो आज हमें स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, अथवा यह महत्व सामाजिक नैतिक मूल्यों के विकास की एक कड़ी हो। वर्ण आश्रम धर्म रित से परे भी है। वस्तुतः जब विजेता या उच्च वर्ग के अधिकार उसके विशेषाधिकार बन जाते हैं तो उसके साथ जो औचित्य का भाव रहता है लोप हो जाता है। ये विशेषाधिकार शोषण का बहाना बन जाते हैं। यही बात टाइनबी ने भी उत्पादक अल्पसंख्यकों तथा अति प्रभावशाली अल्पसंख्यकों के माध्यम से कहने की कोशिश की है। यद्यपि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत चतुर्वर्ण अर्थात शूद्र के लिए जीवन पद्धति के धर्म संयत नियम मिलते हैं, लेकिन उनमें स्पष्ट है कि उन्हें किस कदर दबाया गया, उनका शोषण किया गया, उन्हें कैसे आयोजित बनाया गया, उन्हें आश्रम व्यवस्था से अलग रखा गया, क्योंकि यह सब रित के अंतर्गत संभव नहीं था, इसलिए अधिक लचीली व्यवस्था के रूप में विकसित हो रहा था। उसे फराहो रूपी समाज के उच्च वर्ग ने मात समझ कर निहित स्वार्थों की बलि देवी पर चढ़ा दिया। ऐसा तो होना ही था, क्योंकि समाज को संपन्नता की बलि देवी पर कुछ तो चढ़ाना ही था। अस्त्रीकरण के इस क्रम में वैश्य अपनी उत्पादकता के कारण धन के बल पर समाज के उच्च वर्ग में पहुंच गए। ऐसे करने में नैमित्तिक धर्म या विशेष धर्म का सहारा लिया होगा। विदेशी आक्रमण आदि के कारण आपद धर्म की भी व्यवस्था धर्म के सूक्ष बंधनों में समाज को बांधे रखने के कारण की गई। नंबर तीन, एक ओर जहां धर्म का रूप विकसित हुआ उसने रित से धर्म और आगे वर्ण आश्रम नैमित्तिक तथा आपद धर्म आदि के रूप में प्रगति की। यही समाज भी बड़े बड़े कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा। उसने वर्ण संकर की समस्या जातियों के रूप में की और उनसे भी आगे बढ़ा। डॉक्टर अशोक कुमार मजुमदार ने पाणिनि के सूत्र शूद्राणाम निर्वसितानाम की व्याख्या के संदर्भ में अस्पृश्यता की बात कही है। कुछ लोगों ने जातकों में भी अस्पृश्यता के प्रमाण खोजने की कोशिश की है। यद्यपि इस संदर्भ में कुछ भी सुनिश्चित कह पाना मुश्किल है, रोकीन का यह सिद्धांत कि जब विशेषाधिकारों का क्रम सभी सीमाओं को लांघ जाता है तो जो लोग धोखे में रखे जाते हैं, दबाए जाते हैं, वे विद्रोह करते हैं, किंतु भारत में ऐसा डॉक्टर मजुमदार के अनुसार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अस्त्रीकरण के सिद्धांत पर जातियों तथा अस्पृश्यों का वर्गीकरण था, अतएव दबे हुए लोग संगठित नहीं हो सके। किंतु इस संदर्भ में धर्म द्वारा उन्हें नियंत्रित करने की बात डॉक्टर मजुमदार ने नहीं उठाई है, जो महत्वपूर्ण है। उन्हें इस बात का भरोसा था कि वर्ण तथा जाति धर्म के अनुरूप आचरण करके वे अगले जन्म में अच्छे वर्ग के उत्पन्न होंगे तथा अंततः गत्वा उन्हें भी मोक्ष प्राप्त होगा। उपनिषदिक विचारधारा, सच बोलो, धर्म का आचरण करो और असत से सत्य की ओर चलो, तम से प्रकाश की ओर चलो और मृत्यु से अमरता की ओर चलो की बात हुई थी। इसमें धर्म को चिरंतन सत्य के रूप में, अनंत प्रकाश के रूप में देखा गया। यह जहाँ धर्म के उच्च तथा आध्यात्मिक मूल्यों से संबंध करता है, वहीं यह एक प्रकार एक प्रेरक तत्व के रूप में भी रहा होगा, जिसके कारण विभिन्न जातियों के लोग तथा अस्तित्व के लोग भी व्यक्तित्व निहित स्वार्थ पूर्वक सामाजिक अस्त्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित इन विभाजनों में एक विभक्त होकर स्वधर्म पालन करने में लगे रहे। इस तरह भारत में विकसित हुए धर्म के रूप की व्यक्ति तथा समाज बड़ी गहरी पकड़ थी। वह विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के रूप में समाज को बड़ी अच्छी तरह पकड़े हुए था। कुछ समय प्रोफेसर यूएन घोषाल ने यह मान्यता प्रस्तुत की थी कि सुसंस्कृत उच्च वर्ग का न्याय तथा कोई काल्पनिक अंत प्रेरणा या दैवी प्रकटीकरण नहीं, धर्म के निश्चित करने का मापदंड है। डॉक्टर स्पेलमैन ने इस पर अपनी व्याख्या इस प्रकार दी कि वस्तुतः यह कुछ हद तक सही हो सकता है, किंतु सिद्धांत यह था कि ये स्रोत स्वयं अपने में महान विश्व धर्म से उसी प्रकार लिए गए थे जैसे एक पेड़ से विभिन्न शाखाएं निकलती हैं। इससे डॉक्टर स्पेलमैन के सिद्धांत पर डटे रहने का बोध होता है, किंतु प्रोफेसर बी एन एस यादव द्वारा प्रश्न से संबंधित दिसंबर 1980 में पहली बार प्रकाश में लाए तथ्यों के समक्ष डॉक्टर स्पेलमैन की बहस बेमानिता भीगी पड़ गई थी। प्रोफेसर यादव ने वर्ण के अंतर्गत चलने वाली समाज की दोहरी व्यवस्था के प्रमाण कुषाण काल में रचे गए ग्रंथ अंग विद्या से खोज निकाले हैं। इसमें समाज अज तथा प्रश्न में विभक्त मिलता है। अज के अंतर्गत समाज के उच्च वर्ग की संपन्न लोग आते थे तथा प्रश्न में विभिन्न वर्गों पर आश्रित लोग आते थे, जिसमें नौकर तथा दास भी सम्मिलित थे। उन्होंने यवन जातक, वृद्ध यवन जातक, सारावली तथा बंदोरा प्लेट्स 5-7वीं सती ईस्वी में से भी प्रेसियों के प्रमाण को खोज निकाला, क्योंकि प्राचीन भारत में सभी कुछ धर्म से नियंत्रित था। अतएव दो वर्गों में समाज के विभाजन का यह प्रमाण प्राचीनता को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसे समाज से संबंधित है जिसके अधिकांश प्रमाण समय के कराल हाथों से नष्ट हो चुके हैं। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें निश्चित रूप से ज्ञात है कि यमन जातक 269/270 ईस्वी में पश्चिमी भारत में लिखा गया था। इस दृष्टिकोण से रुद्रादासन के सुदर्शन झील निर्माण से संबंध जूनागढ़ अभिलेख के पुनः मूल्यांकन की समस्या आ खड़ी हुई। प्रोफेसर यादव द्वारा प्रकाश लाए गए इस प्रमाण से उच्च वर्ग द्वारा समाज के निम्न वर्ग को दबाने की बात जहां स्पष्ट होती है, वहीं यह भी कल्पना की जा सकती है कि किस प्रकार उच्च वर्ग अपने हितों में समाज को कस कर बाधे रहने वाले सूत्र अर्थात धर्म की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा होगा। जहाँ अपने लिए वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था उच्च वर्ग ने रखी, वही इन पेशगों के लिए धर्म का रूप एक देवता की तरह विकसित हुआ, किंतु धर्म के उपनिषदिक आध्यात्मिक आदर्शों ने सबको एक सूत्र में बांधने में सहायता अवश्य की होगी, क्योंकि उपनिषद प्रमाण त्रयी के अंतर्गत आने वाले हिंदुओं के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं। हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म के महत्व की अति प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन भारतीय सामाजिक जीवन तो सदैव धार्मिकता की काल पर घूमता रहा। हिंदू समाज में धर्म का महत्व केवल विश्वासों से ही संबंधित नहीं है, बल्कि वह एक उपयोगी और व्यवहारिक धर्म है। यहाँ हम हिंदू समाज में धर्म के महत्व का उल्लेख संक्षेप में कर रहे हैं। नंबर 1, व्यक्तित्व के विकास में सहायक। भारतीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति कुछ उद्देश्यों तथा मोक्ष, ईश्वरीय महानता, समृद्धि और सुख संपत्ति के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार आचरण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह बुराइयों से बचता है तथा उसमें मानवीय गुणों का विकास होता है। धर्म प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति को प्रेरणा प्रदान करता है। इन साधनों की प्राप्ति न होने पर व्यक्ति में जो निराशा एवं आत्महीनता आ जाती है, उसे दूर करने का आधार धर्म ही है। व्यक्ति धर्म के जीवन के महत्व को स्पष्ट करता है और उसे पवित्र भावनाओं की ओर अग्रसर करता है। इन सब के परिणाम स्वरूप उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। नंबर 2, सामाजिक संगठन में सहायक। धर्म हमारे समाज के धार्मिक संगठन में सहायक रहा है। हिंदू धर्म ने समस्त सदस्यों के कर्तव्यों का निर्धारण करके उन्हें एक विशिष्ट सामाजिक स्थिति प्रदान करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। परिणाम यह है कि हमारे समाज में पद हेतु होने वाले संघर्षों की मात्रा बहुत कम रही है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वधर्म की सीमाओं में रहकर अपने कर्तव्यों के पालन का प्रयास करता था। धर्म ने ही पाप पुण्य मोक्ष कर्म की भावना एवं धारणा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक जीवन व्यतीत करने का प्रोत्साहन दिया। परिणाम स्वरूप स्वस्थ सामाजिक संबंधों का विकास तो हुआ ही, साथ ही परिवार भी एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करने लगे। यदि समाज में सभी व्यक्ति अपने अधिकारों का दावा करने लगे तो समाज का संगठन नष्ट हो जाएगा। हिंदू धर्म ने त्याग, सहानुभूति और सामूहिकता के गुणों को प्रोत्साहन देकर सामाजिक संगठन में योगदान किया। नंबर 3, अनौपचारिक नियंत्रण का साधन। धर्म व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करने पर और सामाजिक व्यवस्था के प्रति व्यक्तियों की निष्ठा बनाए रखने का सर्वोत्तम साधन है। कानून और न्यायालय द्वारा जो नियंत्रण स्थापित होता है वह औपचारिक होता है। बहुधा यह देखा जाता है कि व्यक्ति मात्र मानवीय गुणों का उल्लंघन करते हैं, परंतु धार्मिक नियमों की पूजा ईश्वरीय दंड का जो भय है उसके कारण उनकी अवहेलना नहीं करते। इस प्रकार धर्म व्यक्ति को आत्मनियंत्रण की ओर प्रेरित करता है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख आधार व्यक्तियों में भावात्मक एकता का होता है। इस भावात्मक एकता को स्थापित करने का धर्म एक महत्वपूर्ण साधन है। नंबर 4, धर्म का स्रोत। हिंदू धर्म केवल एक विश्वास नहीं बल्कि वह कर्तव्यों का पालन करने के लिए एक दृढ़ व्यवस्था है। इस धर्म ने प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के प्रति अपने देश काल और परिस्थितियों के अनुसार दायित्वों का निर्वाह करने को प्रोत्साहन दिया है। गीता में जो निष्काम कर्म का आदेश दिया गया है उसका संबंध वैराग्य अपने दायित्व के प्रति उदासीनता से नहीं बल्कि दायित्व को पूर्ण करने के बाद भी उनके परिणामों के प्रति सशक्त रहना है। हिंदू धर्म केवल निष्काम कर्म की व्यवस्था करता है। इस कर्मवाद की भावना के फलस्वरूप हमारे समाज में मानसिक संस्कारों की समस्या उत्पन्न नहीं हुई। नंबर 5, संस्कृति की रक्षा। सभी समाज में संस्कृति की रक्षा करने में धर्म ने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु धर्म ने अपने व्यवहारिक और त्याग स्वरूप के कारण भारतीय संस्कृति को हजारों वर्षों तक अस्थायी बनाए रखा। संसार की अनेक संस्कृतियाँ और सभ्यताएँ विकसित होकर उजड़ गईं, परंतु वैदिक संस्कृति की भांति कोई भी संस्कृति दृढ़ नहीं हो सकी। कारण यह है कि हिंदू धर्म ने व्यक्तियों के मध्य श्रम विभाजन की सुंदर व्यवस्था कर पुरुषार्थों, कर्मों और सभी परिस्थितियों से अनुकूलन करने की क्षमता उत्पन्न करके व्यवसाय एवं धर्म का प्रतिपादन किया और वैदिक सभ्यता को अस्थायी रूप प्रदान किया। नंबर 6, सामान्य कल्याण में सहायक। धर्म सामान्य कल्याण में भी सहायक सिद्ध होता है। यह व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहन न देकर सामान्य कल्याण में वृद्धि का प्रयास करता है। भारतीय समाज में बंधुत्व विकास, पारस्परिक सहायता, सहयोग, कल्याण और त्याग को प्रेरणा देता है एवं उसमें सामान्य कल्याण की भावना विकसित करता है। मौलिकता के वर्तमान युग में यदि कहीं निस्वार्थ सेवा, संतोष और सद्भाव का गुण है तो वह भारतीय समाज ही है। भारतीय समाज में इन गुणों का विकास हिंदू धर्म द्वारा ही किया गया। कुछ पश्चिमी विचारक हिंदू धर्म पर यह दोष लगाते हैं कि उससे व्यक्ति निकम्मा बन जाता है, परंतु यह दोष हमारे धर्म का नहीं बल्कि धर्म से उत्पन्न होने वाली रूढ़ियों से है। 3, ऋण का सिद्धांत। प्राचीन भारतीय सामाजिक संगठन के रूप में 3 ऋण का सिद्धांत। भारत में सदैव धर्म की प्रधानता थी। मानव जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति रहा। हमारी सामाजिक व्यवस्था की संरचना मोक्ष प्राप्ति हेतु ही निर्मित की गई है। भारतीय समाज में जीवन को त्याग के आदर्श में ढालने हेतु व्यक्ति के सम्मुख स्पष्ट किया गया है कि मानव जीवन अनेक चर एवं अचर तथ्यों का ऋणी है। इन ऋणों की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहन न मिले तथा व्यक्ति समाज एवं अन्य जीवों के प्रति अपने कर्तव्य पालन कर सके। इन ऋणों की संख्या भिन्न भिन्न है। तैतरी ब्राह्मण के अनुसार मनुष्य के ऊपर तीन ऋण हैं। देवऋषि एवं तृतीय ऋण होता है। शतपथ ब्राह्मण में पांच प्रकार के ऋण का उल्लेख किया गया है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण। नंबर एक, देव ऋण। भारतीय सामाजिक व्यवस्था यह मानती है कि प्रत्येक व्यक्ति देवताओं का ऋणी है, क्योंकि जल, भूमि, वायु और दूसरे अन्य बहुमूल्य पदार्थों के द्वारा देवताओं ने हमें जीवन प्रदान किया है। देवता ही हमारा पालन पोषण करते हैं और इस कारण हम देवताओं के ऋणी हैं। देव ऋण की महत्व विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा चुकाया जा सकता है। नंबर दो, ऋषि ऋण। देवताओं की भांति मनुष्य ऋषियों का भी ऋण है, क्योंकि उन्हीं का साधन ज्ञान तप और सहायता से वह ज्ञान प्राप्त करता है। ऋषियों की सहायता प्राप्त किए बिना ना तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सकता है और ना उसके ज्ञान भंडार में वृद्धि हो सकती है। इस ऋण को दूसरे को शिक्षा प्रदान करके चुकाया जा सकता है। नंबर तीन, तृतीय ऋण। तृतीय ऋण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था की यह मान्यता है कि चूंकि माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं और शिक्षा एवं समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा हमारे व्यक्तित्व का विकास में योगदान देते हैं, अतएव हम सब अपने माता पिता के ऋणी हैं। इसी ऋण को संतानोत्पत्ति के द्वारा चुकाया जा सकता है। नंबर चार, अतिथि ऋण। हिंदू सामाजिक व्यवस्था यह है कि हम अपने अतिथियों के भी ऋणी हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनेक स्तरों पर अतिथि के द्वारा ही अपने जीवन को सुखी रख पाता है। इस ऋण के महत्व को स्पष्ट करने के हेतु प्रत्येक व्यक्ति अपने उपनयन संस्कार के समय दीक्षा मांगने का कार्य करना होता है। यह इस प्रकार के ऋण के महत्व की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। नंबर पाँच, भूत ऋण। इस ऋण के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि हम अपने जीवन में ऋषियों, माता पिता, अतिथियों के प्रति ही ऋणी नहीं है, बल्कि अपने पहले से उत्पन्न अनेक वनस्पतियों के भी ऋणी है, क्योंकि उन्हीं वनस्पतियों से हम शक्ति प्राप्त करते हैं और हमारे पोषण में भी योगदान देते हैं। तैतरी ब्राह्मण में तीन प्रकार के ऋण बतलाए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण। नंबर एक, देव ऋण। तैतरी ब्राह्मण में कहा गया है कि मनुष्य देवताओं का ऋणी है, क्योंकि जल, भूमि, वायु तथा दूसरे बहुमूल्य पदार्थ जो हमारे जीवन हेतु आवश्यक है, उन्हें देवताओं ने हमें प्रदान किया है। देवता ही हमारे पालन पोषण करते हैं, अतः हम देवताओं के ऋणी हैं। देवताओं के ऋण से मुक्त होने के लिए हमें देवताओं की उपासना, अर्चना एवं वंदना करनी चाहिए तथा यज्ञ भी करनी चाहिए। यज्ञों से हम संस्कार से मुक्त होते हैं तथा देवताओं के प्रति अपने ऋण से ऋण होते हैं। नंबर दो, ऋषि ऋण। मनुष्य ऋषियों का भी ऋणी है, क्योंकि ऋषियों की साधना ज्ञान तप तथा सहायता से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ऋषियों की मदद से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा उसके ज्ञान की वृद्धि होती है। ऋषि ही हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। ऋषि के ऋण से ऋण होने के लिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ज्ञान प्राप्त करे और आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करे। इस कारण से ही वह ऋण से मुक्त हो सकता है। ऋषियों एवं ज्ञानियों का सम्मान करने से ही मनुष्य ऋषि ऋण से ऋण होता है। नंबर तीन, तृतीय ऋण। भारतीय सामाजिक व्यवस्था की मान्यता है कि माता पिता हमें जन्म देते हैं तथा हमारा पालन पोषण करते हैं, अतः हम अपने माता पिता के ऋणी हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके साथ आदि की समुचित व्यवस्था करे। माता पिता ने हमें जन्म दिया है तथा पालन पोषण किया है, अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम पुत्र को जन्म देकर उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी ग्रहण करें जिससे मानव जीवन की निरंतरता बनी रहे। उपरोक्त ऋणों से मुक्ति हेतु ही महायज्ञों का प्रविधान किया गया है तथा मनुष्य के लिए चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बताए गए हैं। इन पुरुषार्थों की पूर्ति हेतु चार आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम, इससे प्राप्त करने पर मनुष्य सभी ऋणों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। भारतीय समाज व्यवस्था का मत है कि मोक्ष की प्राप्ति धर्म, अर्थ, काम के सम सेवन से ही संभव है। वास्तव में धर्म, अर्थ, काम ही पुरुषार्थ है। मोक्ष तो लक्ष्य है। सृष्टि की रक्षा हेतु ही ऋण का प्रविधान किया गया है तथा उससे मुक्त होने के उपाय बतलाए गए हैं। इसी उद्देश्य हेतु मनुष्य के पुरुषार्थों का निर्धारण करके उसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मानव जीवन को आश्रम में विभक्त किया गया तथा प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति के अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इन कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए मानव सृष्टि की निरंतरता को बनाए रखता है तथा अपने सामाजिक ऋण से भी मुक्त हो जाता है।